آفتاب صاحب، یہ بتائیے گا کہ 1986 سے آپ نے باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا اور آپ نے ایک انگریزی اخبار سے صحافت شروع کی تھی، مگر بعد میں آپ کا رجحان زیادہ اردو کی طرف ہو گیا، تو ایسا کیوں ہوا؟
اس لیے کہ ہمارے ملک میں جو پاپولر جرنلزم ہے، وہ جس کی کنزمپشن ہے، وہ بہت زیادہ اردو ہے، تو میں نے اردو میں کالم نگاری کا آغاز 95 میں کیا تھا، گو کہ 86 میں انگریزی میں نے جرنلزم شروع کر دیا تھا، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کہیں زیادہ پذیرائی اردو کالم نگاری میں حاصل ہوئی، جس کی بنا پر پھر میں نے یہی کریٹو رائٹنگز کو، گو کہ میں انگریزی کالم بھی لکھتا ہوں، ابھی تک لکھ رہا ہوں، لیکن پھر کالم نگاری نیا نیا ٹرینڈ تھا، اس کا بڑا پاپولر ٹرینڈ تھا، تو میں نے پھر انگریزی رپورٹنگ کو خیر بات کہتے ہوئے اردو کالم نگاری شروع کی، جو بعد میں پھر انگریزی کالم نگاری بھی، دونوں جاری ہیں ابھی تک۔
تو آپ دونوں کو کس طرح ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جاتا کیونکہ آپ اردو میں بھی لکھتے ہیں، ساتھ میں آپ پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور آپ انگریزی کی طرف بھی، آپ کا رجحان ابھی تک برقرار ہے، تو یہ ساری چیزیں مینج کرنا مشکل نہیں ہے؟
مشکل تو ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ڈرے اس وقت سے جب میں انگریزی شو کرنے جا رہا ہوں۔ ایک میں نے آج ہی جیو کی انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اوپننگ ہے، اگر آپ کا کوئی ارادہ ہے اچھا انگریزی شو کرنے کا، تو خبرناک کے پیٹرن پر اس سے ملتا جلتا ایک بڑا خوبصورت انگریزی کانسیپٹ، جس کو میں خود ہوسٹ کروں گا، اور یہ اپنے شوق کی وجہ سے، اس میں مزید کام کرنے کا جو ہے نا ایک خبت، وہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، صرف یہ کہ ایک اچھا کام ڈلیور کرنے کا شوق جو ہے، اس کے تحت میں نے انہیں کہا، اور آج ہی مجھے ان کا جواب آیا کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، ہم جیو انٹرنیشنل کے ساتھ ڈسکس کر کے آپ کو اس کا جواب دیں گے۔
تو آپ کو لگتا ہے کہ جس قسم کا شو آپ اس وقت ابھی کر رہے ہیں، کامیڈی ہے، اس میں اور بہت سارے مختلف پہلو ہیں، تو کیا انگریزی زبان کے اندر بھی یہ تجربہ کامیاب رہے گا؟
انشاءاللہ رہے گا، بہت زیادہ رہے گا، انگریزی زبان میں تو بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ میرا انگریزی کالم جو ہے، انگریزی اگر آپ دیکھیں، میں نیشن میں لکھتا رہا ہوں اور آج کل نیوز ویک میں لکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس میں مجھے جو ایک خاص طرح کی جو ریڈرشپ ہے، وہ کئی گنا زیادہ پذیرائی دیتی ہے، اور اس کو اس لیے کہ اچھا مزاح انگریزی میں تو شروع سے ہی بہت کم تھا ہمارے ہاں، تو اب تو آلموسٹ ناپید ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ محمد ادریس آخری مزاحیہ فکاہیہ انگریزی کالم نگار تھے، جن کی وفات کو 10 سال کے قریب ہو چکا ہے، 10 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، تو میں اسی سٹائل میں لکھتا ہوں، وہ شرارتی گوسپ سٹائل ہے۔ جگنو موسن لکھتی ہیں، بہت خوبصورت لکھتی ہیں، فرائیڈے ٹائمز میں میری بڑی انسپریشن ہے، وہ میری فیورٹ کالمنسٹ ہے، اور ایک آدھ کو اور لکھتا ہے اسی سٹائل میں، باقی تو اور ہے ہی کوئی نہیں۔ انگریزی اردو میں تو آپ بیسیوں کالم نگار مل جائیں گے، آپ کو انگریزی نہیں ملتا۔ تو آپ نے اگر میرا کالم دیکھنا ہو تو newsweek.pk/آفتاب اقبال وہ دیکھیے۔
یہ جو انگریزی کی طرف آپ کا رجحان اتنا ہے، کیا اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ آپ امریکہ بھی آ کر رہے اور آپ نے یہاں پر بھی کچھ پڑھائی کی، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ امریکہ کے ایکسپیرینس نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا، اور کیا کسی حد تک آپ کی زندگی کو تبدیل کیا یا نہیں؟
دیکھیں، امریکہ آنا اور پڑھنا، میں سمجھتا ہوں یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی تھی، اللہ نے مجھے موقع دیا، اور عین اس وقت دیا جب مجھے اس کی اشد ضرورت تھی۔ میں قدرے میچیورٹی حاصل کر چکا تھا زندگی میں، میں نے ماسٹرز کر لیا تھا گورنمنٹ کالج لاہور سے، اس کے بعد سین جوز اسٹیٹ یونیورسٹی مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایجوکیشن نے مجھے ایک سے زائد چیزیں عطا کیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے ایک ہائیسٹ پروفائل ایجوکیشن جو ہے، اس کا ایکسپیرینس حاصل ہوا۔ دوسرا، مجھے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ فارمیشن کا ایک بہت عمدہ موقع نصیب ہوا، جو پرسنالٹی فارمیشن ہوتی ہے، کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں، اپنے کلچر میں سیکھ ہی نہیں پاتے، اور یہ بات میں نے اپنے سفر نامہ امریکہ میں بھی کر رکھی ہے، کہ مجھے قطار میں کھڑے ہونے کا پتا تو تھا کہ قطار میں کھڑے ہونے کے فیوز و برکات کیا ہوتے ہیں، اس کی لاجک، اس کا ریشنل پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ تہذیب کی ابتدا، تمدن کی، کلچر کی، سولائز ہونے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ پھر اور بہت ساری چیزیں، یعنی میں نے، میرے ایک چیپٹر کا عنوان ہے، میرا ایک چیپٹر ہے، اس کی پہلی لائن یہ ہے کہ ابتدائی چند، امریکہ میں قیام کے ابتدائی چند ہفتے تو ہم نے صرف تمیز سیکھنے میں ضائع کر دیے۔ یعنی تمیز ہی سیکھنا جو ہے نا، तो बोलते किस तरह, बात किस तरह करते हैं, दूसरे को बात करने का मौका कैसे देते हैं, अच्छे मौजू पर झगड़ते किस तरह हैं, अपने हक के लिए बात किस तरह करते हैं। मसलन एक वो उसी के अंदर एक मजमून था जिसका, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी वो किताब ट्रांसलेट होकर इस वक्त कांग्रेस लाइब्रेरी में मौजूद है, और ये मुझे नहीं पता था, मेरी मर्जी के बगैर, मुझे पूछे बगैर एक साहब ने ट्रांसलेट कर डाली वो, और बड़ा बड़ी अच्छी, मैं बड़ा खुश हुआ देखकर। वो तो बड़े वॉल्यूम्स उन्होंने उसके वो ट्रांसलेट करके, तो बड़ा उसको केस स्टडी के तौर पर वो लिया है कि थर्ड वर्ल्ड से आया हुआ या पाकिस्तान से आया हुआ एक स्टूडेंट जो है वो क्या समझता है कि कैसी जुलूस निकल रहा है, कैसा मुजाहरा हो रहा है, लेकिन उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही, कोई टायर नहीं जलाया जा रहा, कोई पुलिस के साथ खड्डा नहीं हो रहा, तो ये कैसा इम्पोर्टेंट सा एक जुलूस है। तो इस पर मैंने हैरत का इजहार किया, फिर महसूस ये हुआ कि ये सफेद रंग का गुंबद, उसका नाम है सफेद रंग का गुंबद, मेरा वो मजमून जो है, और वो इट इज ऑल अबाउट कांग्रेस। तो मैं उन चीजों की हद तक तो मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र है मुझे वो मौका मिला कि ना सिर्फ तालीम का बल्कि तहजीब का भी, कि अमरीका से मैंने, शुक्र है कि मैंने वो तमाम अच्छाइयां जो अमरीका में मौजूद हैं वो सीख ली, और वो बुराइयां जिनसे अमरीका, अब भी मैं समझता हूँ पूरी दुनिया अटी पड़ी है, अमरीका भी अटा पड़ा, वो मुझे सीखने के लिए पाकिस्तान ही काफी था, अमरीका ने कोई रोल नहीं प्ले किया उसमें।
तो ये बताइए कि अमेरिका में आप कहाँ कहाँ रहे, अक्सर आपने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि आप हमारे शहर वाशिंगटन में भी रहे हैं, तो कुछ उस तजुर्बे के बारे में बताइए।
वाशिंगटन डीसी को मैं हमेशा अपना सेकंड होम कहता हूँ, कि मेरी बहुत खूबसूरत यादें वाशिंगटन डीसी से, रिवर पटामिक से, अलेक्जेंड्रिया से वाबस्ता है, इसके तमाम इलाके जो है वो आर्लिंगटन, अलेक्जेंड्रिया जो सबर्ब्स हैं, फिर वाशिंगटन डीसी मेरा रोज आना जाना जो है, 17th स्ट्रीट, 19th स्ट्रीट, फिर विस्कॉन्सन, ये सारी जगह जो है वो मेरी बड़ी देखी भाली, बहुत ज्यादा अमेरिका में मेरा आना जाना जो है ना, वाशिंगटन डीसी में मेरा रहा।
ये बताइएगा आफताब साहब कि पंजाब हुकूमत में भी आपने मीडिया के हवाले से कुछ खिदमात अदा की, और आपके कुछ सियासतदानों के साथ आप काफी करीबी ताल्लुक भी रहे, और आपने उन्हें बहुत करीब से भी देखा, तो वो तजुर्बा आपकी जिंदगी का कैसा था, क्या वो दूसरी सहाफत से कदर मुख्तलिफ था क्योंकि उसमें आपने सियासतदानों के साथ डील करना था, वो कैसा था?
वो बहुत उम्दा तजुर्बा था मुझे, असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मेरा वो एक्सपीरियंस मेरी किस्मत में ना होता तो शायद आज ना मैं खबरनाक कर सकता, ना मैं इस तरह लिख सकता, ना इस सिस्टम के बारे में बोल सकता। और मैं, मुझे आपने देखा होगा कि मैं आमतौर पर ये तू मैं वाले टॉक शोज जो हैं इनमें बहुत कम जाता हूँ, बल्कि कभी नहीं गया मैं समझता हूँ शायद एक आध दफा मुझसे ये सरजद हुआ जाना, तो क्योंकि मैं शोर नहीं मचाता ज्यादा, मुझे काफी हद तक इस सिस्टम की समझ आ गई थी इन लोगों के साथ बैठने और काम करने के बाद। तो मैंने तहिया किया था कि जिस तौर हो सका, जितना मुमकिन हो सका, मैं इस सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तो जमूद का, यबूसत का और स्टेटस को का शिकार सिस्टम है, इसको चेंज होना है, ये तो बहुत स्टैग्नेंट होता चला जा रहा है। बहुत सो के साथ काम किया लेकिन हनीफ रामे स्टैंड आउट।
कुछ अर्सा पहले जो आपकी वजह शोहरत बना प्रोग्राम हस्पे हाल, उसके बारे में लोग अभी भी आपसे पूछते हैं, आप इस नाम से उनवान से कॉलम भी लिखते थे, प्रोग्राम आपने छोड़ दिया, आपने ये टाइटल भी छोड़ दिया, क्या आपके लिए ये एक बहुत आसान तजुर्बा रहा कि आप एक चीज आपने बनाई शुरू से, उसको उस आइडिया को कंसीव किया, फिर प्रोग्राम किया, वो हिट हो गया, और फिर एंड पीक पे आपने उसको छोड़ दिया?
तो उसका लुत्फ ही यही था उसका कि मैंने एंड पीक पे उसको छोड़ा, क्योंकि मैं उससे आगे देखना चाहता था, मैं बिल्कुल काम से, शो से मायूस नहीं हुआ था, मैं उससे आगे उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी उस कामयाबी को बड़ी देर तक मेरे दोस्त, मेरे घर वाले भी फ्लूक समझते रहे कि फ्लूक है, लग गया, और माँ सिवाय मेरे शायद मेरे बहन भाई भी यही समझते रहे कि ये एक फ्लूक था जो अल्लाह ताला कभी कभी अता कर देता है किसी ना किसी को, तो आफ्ताब साहब इज जस्ट मैसिंग विद सक्सेस एंड ही शुड नॉट। मुझे यकीन था कि मैं इससे बेहतर प्रोग्राम करूंगा, इससे बड़ी ऑडियंस, ज्यादा, कहीं ज्यादा बड़ी ऑडियंस को खींचूंगा, और मुझे उसके लिए बड़ी तगोदौ भी करना पड़ेगी, और ये मुझे पता था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ है वो मिलन मेरे जहन में यही कुछ था, मैं इसी तरह की इम्पेडिमेंट्स को प्रीएम्प्ट कर रहा था, फोर्सी कर रहा था, और वही कुछ हुआ. और अल्टीमेटली विद इन टू मंथ्स टाइम आफ्टर द टेक ऑफ, खबरनाक अलहमदुल्ला, नेवर मेट एनी टर्बुलेंस एवर सिंस, देयर वाज नो लुकिंग बैक.
तो आफ्ताब साहब, बज़ाहिर जो आपकी शख्सियत के बारे में ऐसा मालूम होता है कि आप जिंदगी में नए तजुर्बात से घबराते नहीं, आप रिस्क लेने से नहीं डरते, क्या ये दुरुस्त है? और अगर है तो फिर ऐसा कैसे है, क्यों है?
बस ये है कि मैं समझता हूँ कि आपको रिस्क जो है ना, एक खामखा का रिस्क नहीं लेना चाहिए. रिस्क वहां लेना बनता है जहाँ आपके अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है, आप नेक नियती से काम कर रहे हैं, फिर यकायक आप महसूस करें कि आप खुद उससे बोर होने लग गए हैं, वो चीज आपको खुद अब उससे कुछ और तरफ ले जा रही है. मसलन अब राइट नाउ एक नई कैफियत से मैं गुजर रहा हूँ. मैं खबरनाक के साथ साथ कुछ और भी करने जा रहा हूँ कि लाहौर में एक बड़ा तगड़ा प्रोडक्शन हाउस मेरा अपना हुआ करता था, जो मैंने उस वक्त से खत्म कर दिया, बंद कर दिया जब से हस्पताल शुरू किया था. अब आकर सात साल बाद उसको असर नौ तश्कील दिया. मैं नए प्रोग्राम्स तश्कील दे रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के लिए. जफर इकबाल साहब मेरे वालिद मोहतरम, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, मेरे से मशावरत कर लेते हैं. मेरा वो प्रोडक्शन हाउस उनको बड़ी हेल्प कर रहा है. मेरी फैमिली के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं. मेरी बेटी मीडिया पढ़ रही है साउथहैम्पटन यूके में, तो वो भी इंटरेस्टेड है कि मीडिया ही को आगे बढ़ाने के मामला जो है ना, तो फैमिली में ये मौजूद है. तो मैं एक अच्छी ट्रेडिशन फैमिली में ये दे के जाऊंगा इंशाल्लाह कि आप अपने प्रोडक्शन हाउस से बहुत सी अच्छी नई प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें. तो मे भी आगे साल डेढ़ बाद मैं खबरनाक की जो है ना, जो जो होस्टिंग है, इससे दस्तबरदार हो जाऊं. हो सकता है किसी के हक में मैं खुद ही तैयार करूं, जिस तरह जॉनी कार्सन ने, आपको तो नहीं याद होगा जब मैं यूएस में था तो जॉनी कार्सन शो बड़ा मशहूर शो था, और उसने अपने शागिर्द और अपने प्रोड्यूसर जे लेनो को ये नवाज दिया था कि लो भाई ये तुम ले लो, मौज करो. तो फिर जे लेनो ने उसको चार चांद लगाए.
जी जी. और अब वो भी जा रहे हैं कर रहा है अब, लेकिन वो भी जा रहे हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं उस शो से.
जी जी. ये तो फिर सर्कल ऑफ लाइफ तो इसी तरह चलती है ना, मुफासा और उसके बाद फिर सिम्बा और सिम्बा के बाद फिर इसी तरह चलता है.
बिल्कुल बिल्कुल. आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि आपकी शख्सियत के बहुत मुख्तलिफ से पहलू नजर आते हैं हमें. आपने कॉमेडी का शो तो हम आपका देख ही रहे हैं कई सालों से, आपने ड्रामे भी बनाए, आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, तो मीडिया के अंदर किस चीज से आप खुद को ज्यादा करीब समझते हैं, और क्या इस फील्ड में कभी कोई आपका उस्ताद भी रहा है, कोई मेंटोर आपका रहा है?
नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा है सर. छोटी छोटी चीजें मुख्तलिफ जगहों से मैं पिक करता रहा हूँ. टेक्निक और टेक्नोलॉजी में मैंने कुछ असातिज़ा पकड़े थे. टेक्निक में मैंने यावर हयात साहब से बहुत फैज लिया है. टेक्नोलॉजी में हमारे दोस्त हैं बशीर कायद साहब, वो नए नए कंप्यूटर और नए नए जो इख्तराअत थी उसमें पढ़ के बाहर से आए थे, लिख के तजुर्बा करके काम करके, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. अदरवाइज मैंने कुछ किसी से एज सच उस्ताद से नहीं. मेरी अगर कोई मेरा एरिया जो आप पूछ रही हैं, अगर कोई मेरा एरिया है ना स्पेशलिटी, तो वो है क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है खालिस शायरी की तरह जो आप कहीं से सीख नहीं सकते. क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है, आपने सिर्फ उसको निकालना होता है. तो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मेरी स्पेशलिटी है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं महसूस करता हूँ कि ये मेरी मोनोपोली बनती चली जा रही है.
आप सुखन शनास भी हैं, और क्या इसकी एक वजह यह है कि आपको कुदरत ने यह मौका दिया कि आप एक मशहूर शायर के घर पैदा हुए और वो चीज आपकी बचपन से आपकी आबियारी कहिए कि होती रही?
जी जरूर जरूर जरूर. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जफर इकबाल साहब का बेटा होना जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज रहा थ्रू आउट. अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि मैं उनका बेटा, बड़ा बेटा, और सबसे ज्यादा फैज बच्चों में, उनके बच्चों में मैंने ही उनसे लिया है. तो इसके बावजूद मैं शायर नहीं हो सका, इसलिए कि मेरे अंदर शायर था ही नहीं, और मैंने जो दानाई की, अकलमंदी की, वो मैं बहुत जल्द भाग गया था कि मेरे अंदर चूंकि शायर नहीं है, अब मैं जबरदस्ती एक सो कॉल्ड शायर, एक नाम निहाद सा शायर अपने अंदर पैदा करूं और फिर निकालूं और एक बहुत बड़े बरगद के नीचे एक छोटा सा पौधा बन के. तो वो मुझे गवारा ही नहीं था. मैं बिल्कुल इस बात को समझ चुका था कि मेरे अंदर शायर नहीं है, सुखनवरी नहीं है, सुखन फहमी है, तो वो आज भी जारी है.
लेकिन आफ्ताब साहब, अभी जो आपने बात की कि बरगद के नीचे आप एक छोटा सा पौधा नहीं बनना चाहते थे, बरगद के नीचे तो बरगद भी नहीं उगते.
हाँ नहीं, बरगद के नीचे तो कुछ नहीं उगता अल्हम्दुलिल्लाह. फिर ये अब चंद दिन पहले मैं अपने मुंह से ये कहना नहीं चाह रहा, ये जफर इकबाल साहब से कभी पूछिएगा, उनके एक दोस्त है साबिक मेंबर असेंबली, वो उनको सिर्फ एक बात कहने आए कि जी मैं रुका हूँ आपको सिर्फ एक बात कहने. तो उन्होंने कहा जी वो क्या बात है आप बताएं। तो उन्होंने कहा ये देख लें आपका बेटा जो है ना ये बरगद के नीचे बरगद उग गया है। तो ये कहकर बस वो चले गए। तो मैं इस पे बड़ा खुश हूँ और मैं बिल्कुल इससे कसर नफसी से काम नहीं लेता। अल्लाह की अता है कि जिस फील्ड को मैंने हाथ डाला है मैंने जफर इकबाल साहब से कोई एक इंच भी कम नहीं, एक आंठ की कमी नहीं है। मैंने उसको अल्लाह ने मुझे जिस मकाम पे फायज किया है, खड़ा किया है, वो किसी भी तरह उस मकाम से कम नहीं है जो शायरी में जफर साहब ने अपनाया।
ये सवाल फिर मेरे जहन में उठ रहा है कि खबरनाक के हवाले से कि जब आपने कॉमेडी को एक नया अंदाज दिया हस्पे हाल के थ्रू और फिर जब आपने हस्पे हाल छोड़ दिया और फिर आपने एक नया शो करना था और जैसा कि आपने अभी खुद कहा कि आपकी फैमिली भी ये समझ रही थी कि शायद वो एक तुक्का था जो लग गया था, तो क्या उस आइडिया को सोचना, उसके बारे में सोचना, और इससे पहले इस तरह से नहीं हुआ था कि स्टेज को आप काइंड ऑफ ले आए टीवी के ऊपर, तो आपको लग रहा था कि ये तजुर्बा जो है ये आप डूब भी सकते थे इसके अंदर, लेकिन क्या आप वाकई, तो फिर आपने कैसे इसको सोचा?
बड़ा दिलचस्प, ठीक है, बड़ा उम्दा सवाल है आपका कि वाकई उस वक्त ऑड्स क्या थे। ऑड्स जो थे ना वो मेरे खिलाफ थे ज्यादातर, आप ठीक कह रही हैं। मैंने बहुत गौर किया, जब मैं अमेरिका में था तो मेरे चचा मरहूम मियां जावेद इकबाल जिनके साथ मैं रहा करता था उनके पास एक किताब हुआ करती थी, वो बड़े शौक से जौक से थोड़ी थोड़ी करके पढ़ा करते थे उसको, और उसका नाम था डोंट टॉक अबाउट इट डू इट। तो वो बड़ी मशहूर सी बेस्ट सेलर टाइप किताब थी, तो मैंने उसमें से काफी चीजें खंगालने की कोशिश की। एक चीज मैंने पल्ले बांधी, वो ये कि जब कुछ ऐसा काम करने लगो ना तो मतलब राइटर्स के लिए उसमें कुछ एक आध मशवरा भी था ऐसा कि आप अपने वसाइल, अपने तमाम रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके अपने सामने रखो, फिर सोचो कि आपके पास क्या है, इसमें से आपने निकालना है और काम करना है। तो जब मैं इस फील्ड में आया, दुनिया टीवी के जो ओनर हैं, चेयरमैन मियां आमिर, उनका बड़ा रोल था, मुझे इस तरफ वो खींच के लाए थे बड़ी मोहब्बत से और बड़ा मेरे पे उन्होंने ट्रस्ट करते हुए कि ये तुम क्लिक करोगे। लेकिन उस वक्त उनके जहन में भी कुछ नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं एक रूटीन का एक शो कर दूं जो प्राइम टाइम में सियासी खबरों पर तबसरा होता है, चार बंदे बुलाकर आप गुफ्तगू कर देते हैं। मैंने उस पर ये महसूस किया कि ये काम तो हो रहा है, ये काम तो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, इसमें मेरी अपनी नीच क्या होगी, मैं अपनी क्या नीच बनाऊं कि जो दूसरे ना कर सके। इस पर फिर मैंने सोचा कि मेरा जिस तरह का कॉलम है ना, जैसा मैं एक शरारती सा कॉलम लिखता हूं और उसमें वो लोडेड विद इंफॉर्मेशन भी होता है, उसके अंदर कॉमेडी भी भरपूर होती है और उसके अंदर उसलूब की खूबसूरती भी होती है। अब उसलूब की खूबसूरती मैंने यूं किया कि पूरा कॉलम उठाया, अपना उसकी हैसियत कज़ाई जो थी वो टीवी में समो दी। मसलन आप पूछ सकती हैं कि जी चले कंटेंट तो हो गया ना, आप खबर भी देते हैं, तबसरा भी देते हैं, रिसर्च भी देते हैं, कॉमेडी होगी, वो उसलूब की खूबी किधर गई? उसलूब की खूबी है कि आप देखें कि रियल लाइफ में मैं इस तरह का नहीं हूं जिस तरह का मैं वहां बन के बैठा होता हूं ना, ये एक तरह का मुझे एक बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक प्रोफेसर साहब, एक मास्टर जी बन के बैठना पड़ता है। बड़ा अपने लिबास का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी बातों का, कि कहीं मैं कोई ऐसी बात ना करूं जो उस पूरे माहौल के डेकोरम के खिलाफ हो। तो आज तक कभी मेरे से कोई एक छोटी सी भी बात सरजद नहीं हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वजह है कि इसको मैं समझता हूँ कि ये वो उसलूब है जो मैंने कॉलम में मेंटेन किया था, ये वो अटायर है जो मैं अपने शो में मेंटेन कर रहा हूँ।
आफताब साहब, थोड़ी हट के बात करते हैं, आप शो के अंदर हम आपको देखते रहते हैं, आपको मौसीकी से दिलचस्पी है, आर्ट से शगफ है, जबान पर बड़ा उबूर है, तो क्या आपको लगता है कि इन सारी चीजों ने मिलकर ही आपको आफताब इकबाल बनाया?
ये सारी चीजें तो इंग्रेडिएंट्स होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे आफताब इकबाल जो है ना वो किसी और चीज ने बनाया। ये सारी चीजें तो मुझसे कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको नाम ले लेकर बताऊं, ऐसे ऐसे एंकर और होस्ट बैठे हैं यहाँ पर, उनमें बदरजा अतम मौजूद हैं, लेकिन मुझे आफताब इकबाल किसी और चीज ने बनाया है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं।
तो आपको
याद रखिए, कामयाबी से रियाजत का, मेहनत का, मशक्कत का कतन कोई ताल्लुक नहीं, ये कुछ और ही चीजें, ये सारी रूहानी चीजें होती है, पता नहीं कहाँ से आती है। इसको तो आपकी कोई दुआ लग जाती है, आपको किसी की कोई अच्छी जैसे हाल लग जाती है ना तो आपका सारा कुछ बर्बाद हो जाता है, इसी तरह किसी की दुआ लग जाती है तो आपका सारा कुछ चल निकलता है। कोई एक आध चीज अल्लाह ताला को खुश कर देती है तो वो खुशी से आपको, जैसे कहते हैं ना यूनानी देवता जब किसी से बहुत खुश होते थे तो शायरी इनाम में देते थे कि जाओ बच्चा तुम शायर बन जाओ। इसी तरह हम जिसको अल्लाह और अपना शहनशाह समझते हैं और वो है शहनशाहों का शहनशाह है, वो जब किसी से बहुत खुश हो जाता है तो एक वो आजमाइशों के तरीके आपके बना देता है कि आपको एक ऐसी आजमाइश में डाल देता है, एक ऐसी यानी क्यादत का हुनर सिखा देता है आपको, आपको आपको एक बहुत बड़ा राइटर, एक अच्छा अदीब, एक अच्छा शायर, एक बहुत बड़ा सूफी, एक जैयद आलम बना देता है। तो ये उसकी देन है, लेकिन हर देन एक आजमाइश का दरवाजा खोलती है। ये इसे आजमाइश समझ के हम अगर लेंगे तो फिर उस देन का हक अदा कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी फिर ये इत्तफाक है, ये फ्लूक है।
एक बात ये बताइएगा आफ्ताब साहब, मैं अक्सर सोचती हूँ और आपके प्रोग्राम का वो सेगमेंट मेरा पसंदीदा तरीन है उर्दू जबान के हवाले से, जबान व बयान का जो आपका सेगमेंट है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जिस वक्त हम लोगों ने खुद अपनी जबान को उसके साथ एक सोतेला सलूक हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और अब हम लोगों के अंदर बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम तो उर्दू ना पढ़ना पसंद करते हैं, ना बोलना पसंद करते हैं, ना लिखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में ये सेगमेंट करने का क्यों सोचा और इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा, ये कितना एक कामयाब रहा?
ये मेरा जो इस पे बहुत हैरत होती होगी बात लोगों को ये जानकर कि हालांकि है ये कॉमेडी शो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सेगमेंट वाइज रेटिंग जो है इसकी नंबर वन मोस्टली वो होता है जिसमें मेरी कोई खिताबत होती है, मेरी गुफ्तगू होती है, जो मैंने कुछ 7-8 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में किसी एक मौजू पर तकरीर करनी होती है, उसकी रेटिंग, उसको बड़े लोग इनामात से देखते हैं, उसकी रेटिंग सेगमेंट वाइज नंबर वन है। और कंसिस्टेंटली नंबर टू जिस चीज की रेटिंग है वो जुबान बयान है। जुबान बयान बहुत कंसिस्टेंट रहा है अपनी रेटिंग के हवाले से कि हर जगह, परसों तरसों भाटिया साहब हमारे एक दोस्त हैं, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली एवरी नाउ एंड देन, तो वो कहने लगे कि जी थोड़ी जुबानों बयान मैंने बड़ा मजा दें दी, कि थोड़ी बहुत मैं पंजाबी भी सीखना, उर्दू भी सीखना, थोड़ी लैंग्वेज तो सानू संस्कृत भी मिल जाती। और वो एक अपना एक उसके अंदर फ्लेवर है, हर जुबान का फ्लेवर है, संस्कृत का जिक्र भी जब आता है वो खुश होते हैं।
सही। वैसे तो आपने शुरू में हमें बताया कि अब आप एक अंग्रेजी प्रोग्राम जो है उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके अलावा फ्यूचर के क्या प्लान है आपके?
फ्यूचर के प्लान ये है कि रिटायरमेंट फ्रॉम होस्टिंग मैक्सिमम 2 more years, उसके बाद आई विल कंप्लीट माय बायोग्राफिकल वर्क, आई वुड गो इनटू पब्लिकेशंस आल्सो, एंड देन आई हैव सिमल्टेनियसली स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग शोज फ्रॉम माय ओन स्टूडियो, दिस इज कॉमेडी शॉप, आई कॉल इट कॉमेडी शॉप, एंड सम ऑफ द बेस्ट शोज आर इन द ऑफिंग, यू विल बी सीइंग सम वंडरफुल शोज इंशाल्लाह ताला इन द डेज टू कम।
आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, आपकी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं और आप बता रहे थे कि माशाल्लाह ये रुझान एक नस्ल से दूसरी नस्ल से अब तीसरी नस्ल तक जा रहा है, कुछ इसके बारे में, कुछ फैमिली के बारे में बताइए, अपनी बच्चियों के बारे में भी बताइएगा।
तो मेरी वाइफ पढ़ाती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं वो, और बेटी मेरी बड़ी आयशा वो साउथहैम्पटन से मीडिया पढ़ रही है, इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर वो वापस आ जाएगी और यहाँ आकर संभालेगी मामलात को मीडिया से मुतालिक, मेरी ख्वाहिश है एंड मुमकिन है कि ये खबरनाक की होस्टिंग भी वही करे, और जितना वो इसकी एनाटॉमी को समझती है और उसने इसकी मेकिंग में मेरे साथ रोल प्ले किया है तो, और फिर उसकी गेम्स जो हैं वो उससे करवाएंगी, एक मुश्किल शो है लेकिन इंशाल्लाह शी विल डू जस्टिस टू इट। उसके बाद शानजे है, शानजे लॉ में बड़ी इंटरेस्टेड है लेकिन मे भी कोई लॉ बेस्ड कोई मामला मीडिया से मुतालिक वो करे, क्योंकि मीडिया रन्स इन देयर ब्लड, वो बहुत पसंद करती हैं इसको। और सबसे छोटी जो है वो स्कूल गोइंग है अभी, उसका कुछ ज्यादा ध्यान इधर नहीं है, लेकिन शी इज एन आर्टिस्ट बाय नेचर, वो पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्टेड है, वो पेंट वेंट करती है और बेकिंग बड़ी अच्छी करती है।
आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला और हमसे बात की।
थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स इन द यूएस।